ये आकाशवाणी है, अब आप भवतारिणी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में आज शाम 2,080 करोड़ रुपए से अधिक लागत की अनेक आधारभूत विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री गुजरात की 2 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं, जहां उन्होंने आरंभ 6 के 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय है आत्मनिर्भर और विकसित भारत का लक्ष्य। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 4.5 साल के सैन्य गतिरोध के बाद पूर्वी लद्दाख के देवसांग और डेमचोक क्षेत्रों में दोनों देशों की सेना के हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सैन्य सूत्रों के अनुसार स्थानीय कमांडर स्तर पर बातचीत जारी रहेगी और सीमा पर गश्त जल्द ही फिर से शुरू होगी। क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सूत्रों के अनुसार सत्यापन का काम चल रहा है और जमीनी कमांडरों के बीच गश्त के तौर तरीकों पर फैसला लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि लगातार सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों के कारण भारत और चीन आम सहमति पर पहुंचे हैं और आम सहमति के माध्यम से सीमा पर शांति बहाल करने के लिए ऐसा करना जारी रखेंगे। आज रात तेजपुर के बड़ाखाना में सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने में विश्वास करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज दीपोत्सव पर राम की पौड़ी में समेत अयोध्या के 55 घाटों पर 25,12,000 से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष एक और विश्व रिकॉर्ड बना, जिसमें 1,121 बटुकों ने सरयू के घाटों पर एक साथ सबसे बड़ी आरती की। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई अन्य कैबिनेट मंत्री और बड़ी संख्या में संतों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। श्री योगी ने कहा कि दीपोत्सव न केवल अयोध्या और उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा आयोजन बन गया है, बल्कि देश और दुनिया के लिए भी एक अनूठा आयोजन बन गया है। भारतीय रेलवे दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हजारों विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 2,500 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चला रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें, पूछताछ काउंटर, खान पान सेवाएं, पीने का पानी और मोबाइल शौचालय भी स्थापित किए गए हैं। दीपावली के त्यौहार के दौरान संभावित आग की घटनाओं से निपटने के लिए दिल्ली अग्निशमन विभाग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। उधर प्रमुख अस्पतालों ने दीपावली को देखते हुए घायलों के उपचार के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और झारखंड में दूसरे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। मतदान 20 नवंबर को होगा। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए कुल 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। कांग्रेस सांसद वसंत राव चौहान का अगस्त में निधन हो जाने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। उम्मीदवार 1 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना और रायलसीमा में भी गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।